ప్రశ్నార్థి
మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోమణి మంగళం కుంద కుందాయో జయ ధర్మోత్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం దేవుశాసనం. जो विषय चल रहा है उससे संबंधित मेरे विषय से तो संबंधित प्रश्न लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि वो बहुत सरल है और मैं सफल हूँ कि लोगों को समझ में आ रहा है. और जिनके बारे में प्रश्न आएंगे समझ लेंगे उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन दूसरे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जो पता चलता है कि लोग स्वाध्याय करते हैं और विचार भी करते हैं. विचार नहीं करें तो प्रश्न नहीं उठते. एक प्रश्न है, एक तरफ समर अधिकार में बात आती है भेद ज्ञान करो, आत्मा का चिंतन मनन करो, और एक तरफ समय साल परीक्षा में करत है कि भेद ज्ञान चिंतन मनन भी करना भी विकल्प है. ये कलर आता है भाव ये भेद विज्ञान एकदम अच्छे ने धारेगा यावत तावत पराग चित्वा ज्ञान ज्ञान प्रदेश. देखिए भेद ज्ञान की बात दो लेवल पे चलती है. एक तो जैसे नचार देव का शब्द भी है सभी कल्प भेद विज्ञान, यानी अनुभूति के पहले भी जब ये जीव स्व पर के स्वरूप का विचार करता है और गहराई से रसपूर्वक विचार करता है. स्व पर की भिन्नता का मतलब अकेला इतना नहीं है कि दो भिन्न है, मतलब मैं भिन्न हूँ और शरीर भिन्न है, बात यही खत्म नहीं हो जाती बल्कि यहाँ से शुरू होती है. अगर भिन्न है तो कर्ता भी नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ, स्वामी भी नहीं हूँ. तो इस तरह स्व और पर की भिन्नता का समग्र चिंतन ये प्रारंभिक भूमिका में होता है, जिसे समीकल्प भेद विज्ञान कहते. लेकिन यदि जीव वही अटक जाए और उसके भी पार जो स्वरूप सन्मुख ना हो तो भेद विज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए अपेक्षाओं से कदर समझना चाहिए कि भेद ज्ञान करो तो उसमें अगर कोई जीव बिल्कुल ही बाहर की भूमिका में है तो उसको स्वपद का स्वरूप समझो. और फिर कहते हैं कि जिसे भी कोई फायदा नहीं है मतलब अनुभूति में जाओ. ठीक इसी टाइप का एक और प्रश्न है. आपने एक बार कहा था आत्मा की बातें करना पुण्य है और आत्मा से बातें करना धर्म है. ये थोड़े अनुप्रास वाले और प्रतीकात्मक शब्द होते हैं वाक्य प्रयोग में. आत्मा की बातें करना मतलब विषय कटाई की बातें नहीं करना, कर्ता भूमिका बने की बातें नहीं करना, अकर्ता स्वभाव की ही बात करना, उसी का चिंतन मनन करना, ये विकल्प है. और ये उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण, अन्य पुण्यों की अपेक्षा इसमें विशेष पुण्य बंध होता है. और आत्मा से बातें करना ये तो बिल्कुल ही निराली चीज है. आत्मा से बातें करने का मतलब होता है प्रगति स्वरूप में तन्मय होकर बढ़ते, एकाकार होकर बढ़ते, निर्विकल्प अनुभूति, उसका नाम आत्मा से बातें करते. बस उससे बाद में लेंगे, अभी देवी जी ले.
इसमें एक प्रश्न ही आ रहा था, समान रूप से अपनी चर्चा चल रही, हालांकि प्रकरण से संबंधित प्रश्न नहीं है ये, लेकिन एक प्रश्न आया है कि मनुष्य गति में तिर्यंशी गति का उदय उदाहरण से समझाइए. मनुष्य गति में तिर्यंशी गति का उदय, देखिए उसमें क्या होता है कि प्रति समय जो परिणाम होते हैं जीव के, उदय माने मनुष्य गति किसे कहना, पहले तो मनुष्य गति संबंधी जो औदयिक भाव है उसे मनुष्य गति कहते हैं. मनुष्य शरीर को मनुष्य गति नहीं कहते, ये पूज्य गुरुदेश के प्रवचन में आ जाया था. और उसी समय जैसे अपने परिणाम में मायाचारी का परिणाम चल रहा है, तो मायाचारी का परिणाम चल रहा है तो उस समय जो हमारा गति नामकरण जो होता है, गति नामकरण जो बनता है, वो तिरंश गति संबंधी बनता है। आयु कर्म अलग है, ये ध्यान समझे, बहुत इसमें घोटाला होता है कि आयु बंद अलग चीज है और गति बंद अलग चीज है। आयु बंद जीवन में आठ त्रिभाग में बनता है, एक बार बनता है और वो आयु बंद कभी बदलता नहीं है, और गति बंद परिणामों के अनुसार प्रति समय बदलता रहता है, वो नामकरण की प्रकृति है। और वो उदय में आकर के खिर जाती है, मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति में कोई तिरंज गति का उदय आएगा तो मनुष्य से हम तिरंज बनेंगे ऐसा नहीं है, वो उदय आकर के खिर जाता है, वो उसका अर्थ इतना
नहीं, फल नहीं देती,
फल नहीं देती है, मतलब उसका अर्थ इतना है। ये भाई साहब
मेरे से किसी ने ये प्रश्न पूछा था, वो जो बात आई थी ना अकाम निर्जरा और सभी पाक निर्जरा, उसमें थोड़ा सा मेरे को विकल्प बना दो, खुलासा करता हूँ। पहले ज्ञान कक्षु नाम की पुस्तक छपी थी बहुत पहले, 300 इस गाथा पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है और उसमें 1970 की बात मुझे याद आ रहा है, सर 1935 होगा, उसमें लिखा है ज्ञानी अज्ञानी दोनों को सभी पाक अभिपाक निर्जरा होती है। तो गुरुदेव श्री ने अभी जो नए प्रवचन छपे हैं ये 1790 है और इसमें बहुत स्पष्ट आ गया, वो बात निकल गई। मैंने कहा था अज्ञानी को अभिपाक निर्जरा नहीं होती, उन्होंने कहा था बराबर। अभी जो सभीपाक निर्जरा की बात है ना, गति का उदय उत्तीर्ण रहती है उसका नष्ट होना, लेकिन जो देवी जी ने बताया वैसा समय माने वो सभी पाक निर्जरा तो बहुत सारे कर्मों की चल रही, अभी पाक तो बिना भेद ज्ञान के प्रसाद की शुरू नहीं होती। अभी मैं अपने प्रश्न पर आता हूँ, परिणति यानी अनुभूति बनने में शु तफावत है, परिणति और अनुभूति, अगर इसको हम श्रद्धा मूलक ले लें तो जो जीव समय दृष्टि है विषयों में परिवर्त रहा है तो भी उसकी जितना कषाय का भाव हुआ उतनी शुद्ध परिणति उसकी बढ़ रही, उस शुद्धि की कोई हानि नहीं हो रही। और अनुभूति शुद्धोपयोग मूलक ले तो जब उसका उपयोग सब पर द्रव्य पर भावों से छूटकर अपने स्वयं सन्मुख होकर स्वरूप में मग्न होता है तो उसको वहां पर सोन मुक्त शुद्धोपयोग परिणति शुद्ध प्रणति के साथ अगर विशिष्ट प्रसार हो तो उसमें गुणस्थान बढ़ सकता है, थोड़ा विशिष्ट आनंद आ सकता है, और अन्यथा उसी गुणस्थान में रहे तो वही चलता रहता है। अनुभूति शब्द ऐसे दो अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अगर उसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की बात ली जाए तो त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है बाला बाल गोपाल सभी को, और प्रकट पर्याय की बात लेते हैं तो अनुभूति श्रद्धा मूलक अथवा उतनी ज्ञानात्मक प्रतीति मूलक निरंतर चलती रहती है, चाहे वो शुभ उपयोग अशुभ रूप में बढ़ रहा हो, लेकिन जब वो शुभ अशुभ के विकल्पों से उपयोग हटकर स्वरूप में मग्न होता है तो उसमें जो विशिष्ट प्रकार का एक संवेदन होता है वो वहां पर उस शुद्धोपयोग करते उस प्रकार की अनुभूति ली जाती है। ख्याल में आया जिनका प्रश्न, जितना कसाय अभी मान लीजिए कोई अनंत आनंदी क्रोध मान वाले लोग बालक बैठा है शुक्ल दीक्षा है तो बड़ा शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर में तो उसकी परिणति पूर्ण मलिन ही चल रही है। और जिसको भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई कदाचित वो कसाय करता दिख रहा हो तो भी उसके अंदर में वो अनंतानुवादी कथा चौकड़ी के अभाव शुद्धता की प्रणति उतना सुख कहना चाहिए आंशिक जो आतीन्द्रिय है प्रकट बढ़ रहा। उदाहरण के लिए राजा सनक आदि का अपन दर्शन देते हैं नरक में तो भी उतने आश्रय बंधु भी रुक गया 41 प्रकृतियों का जो मिथ्यास से और कथा से होता है। तो यहाँ इतना जो प्रणति और अनुभूति में बनने में तफावत यही है। किनका प्रश्न भैया तो बोले उनको क्या इसमें अभिप्रेत है और कुछ
उनको संतोष हुआ कि नहीं?
हाँ संतोष हुआ कि नहीं, मतलब किनका प्रश्न हो तो बताना पड़ेगा ना। परिणति एक अंतरंग में चलती रहती है, कोई समय दृष्टि खाना खा रहा है विषय में परवर्त रहा है दुकान चला रहा है तो भी उसको जितनी शुद्धता व्यक्त है चौथे पांचवें गुणस्थान वाला हो ग्रस्त है उतनी उसको शुद्धि परिणति चलती रहती है। टोडोमल जी शाम 232 पेज पे इसका एक जवाब दिया, बहुत बढ़िया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो और भी सबके नॉलेज में ये बात आ जाएगी। देखो नृजरा तत्व की भूल में उन्होंने लिखा है, शुभ भावों से पाप की नृजरा पुण्य का बंध और शुद्ध भावों से दोनों के जाए, ऐसा क्यों नहीं कहती। तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सब प्रकृतियों का होता है, स्थिति एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो संसार की कर्मों की स्थिति बढ़ती नहीं, उसको इधर परिणाम से ग्रहण करना, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, स्थिति सबकी घटेगी। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से ही नहीं होता, ऊपर ऊपर की प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियों अनुभाग का तीव्र बंधोदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलट कर शुभ प्रकृति रूप होते हैं, ऐसा संक्रमण शुद्ध दोनों होने भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संबंधित इसके नीचे है जवाब। देखो देखो चतुर्थ गुण स्थान वाला, ये कहना था मुझे, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास करे, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं है, बंध भी बहुत होता है, तुलनात्मक कर रहे हैं चौथे पांचवें छठे सातवें। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण से नहीं निर्जरा होती रहेगी, यानी उसकी शुद्ध प्रणति उसके चल रही है, ये बतलाना था। उसकी दो कथाएं सुगड़ी का भाव, बंध भी थोड़ा होता है, और पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि सब करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठे गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसकी निर्जरा बहुत होती है, बंध उससे भी थोड़ा होता है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं, अंतरंग कथा शक्ति घटने की घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, ये अपने परिणति से घटा देना, मतलब समय दृष्टि की अपेक्षा घटाओ परिणति और अनुभूति उसके लिए घटेगी, आपकी मिथ्या दृष्टि की तो परिणति भी मलिन है अनुभूति भी उल्टी है, ऐसा समझ। अरे
एक प्रश्न आया है, सम्यक्त्व के पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, मतलब ये एक फैक्ट है जो निर्माण की भी बात आती है। अब उसमें दो क्वेश्चन है, क्या मिथ्या ज्ञान से सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव है? ये तो दर्शन में भी प्रश्न हो सकता है, सम्यक दर्शन के पहले श्रद्धा में मिथ्या दर्शन है तो क्या मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होता है? क्योंकि ये तेज शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक कर्म कारक में और एक अपादान कारक में। कोई व्यक्ति मुंबई से इधर आया और ट्रेन से आया तो दोनों में से लगा है, तो क्या दोनों में से का एक ही मतलब है? मुंबई से आया का मतलब पहले मुंबई थी उसे छोड़ा अंदर आया, ठीक है, और ट्रेन से आया तो ट्रेन तो साधन बनी। तो मिथ्या ज्ञान से सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान होता है, इसका एक अर्थ तो ये है कि मिथ्या ज्ञान का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, लेकिन दूसरे वाले का ये इतना मात्र आशय नहीं है। दिक्कत ये है कि जितना भी सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए प्रयत्न होता है वो तो सब मिथ्या दृष्टि करता है। तो भाई साहब जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी कब लड़ी? 47 के पहले के बाद में। आजादी की लड़ाई तब लड़ी गई जब देश गुलाम था, गुलामी के काल में ही आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है। तो मिथ्या ज्ञान होने पर भी वो मिथ्या इसलिए है कि सम्यक दर्शन की मोहर नहीं लगी। एक बहुत बढ़िया उदाहरण आता है, जैसे किसी की मार्कशीट की फोटो कापी हो गए तो फोटो कापी तो सही है, सत्य प्रतिनिधि है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने थोड़ा सुधार कर दिया है, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर का सील सिक्का लगेगा तब वो मानी जाएगी। ऐसे बात सच्ची और ज्ञान झूठा, क्या बोला? जैसे अब ये सब पढ़ रहे हैं ना, सर्वद पर्याय है और एक झगड़ा नहीं करता है, पर्याय का ये स्वरूप है, ये तो गलत है कि सही है? ये तो वस्तु का स्वरूप, ये बात हमारी नहीं है, ये बीमारी की बात। इसलिए जिन्माने की तरफ से देखा जाए तो वो ज्ञान यथार्थ है, मिथ्या ज्ञान में भी यथार्थ निर्णय होता है। क्या बोला? मिथ्या समय दर्शन के पहले मिथ्या ज्ञान में भी यथार्थ निर्णय होता है और उस निर्णय के बल से स्वरूप का रस बढ़ता है और समय दर्शन होता है तो फिर उस ज्ञान से ही समय पने की मोहर लग जाती है। इसलिए इसमें कुछ मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो अभी मिथ्या ज्ञान है तो हम समय का प्रसाद कैसे करें। युवती साहब ने जो गुरुदेव श्री के बारे में लिखा है उसमें इतनी सुंदर पंक्ति आती है कि आखिर इस अज्ञान का अंत कैसे हो, ये प्रश्न जो अज्ञान में ही खड़ा होता है और यही प्रश्न अज्ञान का नाश करने में कारण बनता है। जैसे पीपल में लाख पैदा होती है लेकिन पीपल का नाश करती है, वैसे अज्ञान में ही ये वृत्ति होती है पात्र जीव को, ये अज्ञान का नाश कैसे हो। तो सारा प्रयास तो समस्त के पहले ही होता है। दूसरे प्रश्न का समाधान अपने आप हो जाता है, समस्त के पूर्व होने वाले ज्ञान को क्या नाम दिया जाए। तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा तो मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मोक्ष मार्ग हैं और सम्यक दर्शन के पहले मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो उस ज्ञान को क्योंकि वो मोक्ष मार्ग नहीं है इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। अनुभूति नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है इसलिए वो गलत है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तो मिथ्या होने पर भी अगर वो जिन्माणी के अनुरूप है, तत्व के स्वरूप के अनुरूप है, तो वो जीव उसको समस्त तक ले जाने में हेल्प करता है। चलो देखो
एक प्रश्न है, एक किसी ने प्रश्न किया है कि रावण के जीव को तीर्थंकर प्रकृति बन चुकी है तो कौन से भाव में और नहीं तो कब बनेगी। तो रावण के जीव को तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ये तो नहीं की है, बंध चुकी है ऐसा तो मेरे पढ़ने में तो अभी नहीं आया है, लेकिन बंधेगी और वो जीव तीर्थंकर होने वाला है, अभी तीसरे नरक में तीर्थंकर होने वाला है और सीता जी का जीव उनका धरधर होगा, ये भी शास्त्र में उल्लेख मिलता है। और बस बाकी तो इसमें कुछ और नहीं है, जब बंधेगी जब बन जाएगी अपनी वो जगह होगी, चिंता करने की क्या जरूरत है।
रावण की चिंता पूरी
और उसमें परम प्रदान वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए,
ये पढ़ेंगे तो पूरा ख्याल रखने आएंगे।
एक प्रश्न है, हिंसा में प्रमाद मुख्य छे, कृपा करी विस्तार से समझाओ। ये प्रश्न टोडरमल जी के द्वारा समझाया गया कि यहाँ पर है, इसमें अपने तत्व की भूल में जो आश्रय तत्व आदि की भूल उसमें बताया, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। आप पहले ऐसा समझ लो, कोई मुनिराज ईर्ष्या समिति से जा रहे हैं और कोई काल प्रेरित जीव उड़ करके उनके पग तले दब के मर जाए तो उन्हें हिंसा का पाप का दोष लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। और हम बिना देखे दौड़ते या सीधे सिंपल बात करते चले जा रहे, कोई जीव नहीं भी मरा तो हिंसा का पाप लगेगा। तो आप सब समझते हैं कि हमारे अंदर में प्रमाद है, हमारा कोई विकल्प नहीं, बचे नहीं बचे, कहीं देख रहे कहीं जा रहे। तो ये प्रमाद इसलिए कहा कि आपको उस तरफ का लक्ष्य या विचार विवेक नहीं है। और भी इसका मूल में हिंसा, भाव हिंसा मूल में है। भाव हिंसा माने राग आदि की उत्पत्ति, वो है ना श्लोक अपना प्रसाद सिद्धि अपराधर भाव खलु राग आदि नाम भवत्ते हिंसा इति तेषां उत्पत्ति हिंसा इति जनाम संक्षेप। रागादि परिणामों का उत्पन्न होना ही निश्चय से हिंसा है और उनका उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। और अपन कहते हैं अहिंसा परमो धर्म यतो धर्म ततो जय, जो अहिंसा परम धर्म है वो जयवंत बढ़ते हैं। तो गुरुदेव श्री के प्रश्न में आता ना जो ये नारा चलता ना व्यवहार का, जियो और जीने दो, यही हमारा नारा है, चलते हैं दिलो संबोध। गुरुदेव कहते हैं व्यवहार का वचन है, परमार्थ से तुम राग में जी रहो, राग में जीते रहो, मतलब संसार में रखते रहो, ऐसा कर लेते हैं जगत के लोग, तो वो तो बहुत स्थूल व्यवहार हिंसा आदि की बात है। तो हिंसा में प्रमाद मूल है। मैंने अपन समझते हमने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई जीव हिंसा नहीं हुई। टोडल जी ने लिखा है ना कि अव्रति हो करके अव्रति व्रत माला है, प्रदो का प्रचन है। अव्रति को भी कहा गया तू भेद ज्ञान की आंख वाला है ना, तो वह व्रतादि ग्रहण क्यों नहीं करता, उसको भी समझाया जाता है, क्यों उसको भी प्रमाद है तो नहीं ले पा रहा, तो ऐसा उसको भी समझाते हैं, अज्ञानी को भी समझाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वरूप लक्षी अपना कार्य है वो न करके और परलक्षी जितना भी करता है वो सब प्रमाद में गिना जाता है, ख्याल में है ना, चाहे वो अशुभ जन्म हो या शुभ जन्म हो, अब सब प्रकार के कथन आपको मिले। बस ये समझना कि आप जो मुनिराज का दृष्टांत दिया कि हिंसा कोई तो भी पाप नहीं लगा, क्यों प्रमाद नहीं है, यत्नाचार पूर्वक, तो यत्नाचार पूर्वक उठना बैठना खाना पीना और उसके बावजूद कोई हो जाए धोखे से कोई, तो वो प्रमाद अल्प गिना जाएगा, ग्रस्त है वैसा उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन कहीं हिंसा ही नहीं हुई और आपने उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया तो भी आपकी प्रमाद प्रणति चल रही है, मतलब आपको उस समय उस जीव के रक्षा जी का विकल्प भाव नहीं था। तो ऐसा यही विस्तार है, बाकी तो इसके विस्तार के लिए पूरे ग्रंथ सब भरे पड़े हैं। एक जो बात चल रही थी, ये टोडमल जी से भी प्रश्न पूछा, जो भाई जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया ना कि गुलामी काल में मुझे थोड़ा विकल्प आया तो बता रहा हूँ। इस मोक्षवा प्रकाशक में 87 पेज पे एक शिष्य कहता है कि ज्ञान सही होगा तब वो मिथ्या को पकड़ेगा तो मिथ्या छूटेगा, मिथ्या तो स्वयं जानता नहीं कि ये मिथ्या है, ज्ञान ही जानेगा। तो कहा कि फिर संसार का कारण मिथ्या दर्शन मत कहो, मिथ्या ज्ञान कहो। तो टोडमल जी का है तो ऐसे जानेगा तो मानेगा, ये पूरी शैली समझदार की है। और ये टोडमल जी पहले ज्ञान में तुम्हारी ताकत है, ज्ञान तो मिथ्या सम्यक वो सच्चा निर्णय करने की ताकत वाला होकर के भी निर्णय नहीं करता, ये वस्तुता उसका दोष है, अथवा उसमें मिथ्या का उदय भी करना दीप से कहा जाता है ऐसा है। अभय जी
ये सूत्र जो भरिता ने अभी प्रश्न में पढ़ा है इसको क्लियर समझने के लिए आप नास्ती से समझे, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, यहाँ प्रमाद मतलब आलस्य नहीं है, राग ही प्रमाद है, तो राग होगा तो हिंसा की गारंटी है, वही हिंसा है, बाह्य क्रिया की मुख्यता नहीं, बाह्य क्रिया बाह्य हिंसा हो रहे और अंदर में हिंसा नहीं भी हो रहे ऐसा भी होता है, तो बाह्य क्रिया गौण। इसी तरह विषय सेवन में भी विषय की वासना सुख बुद्धि अभिलाषा उसके प्रति राग वही बंध का कारण, क्रिया बंध का कारण नहीं, तो किसको मुख करना किसको गौण करना इसको इंडिकेट किया है। मेरे पास एक प्रश्न है बहुत अच्छा मार्मिक है, गृहित मिथ्या को कहा सूक्ष्म स्वरूप स्पष्ट कीजिए, पहले तो मैं ये कंफ्यूजन में हूँ कि सूक्ष्म किसे कहते हैं और स्थूल किसे कहते हैं। वास्तव में जो हमारे को जल्दी ख्याल में आ जाए प्रत्यक्ष देखे बाह्य क्रिया के माध्यम से समझ में आ जाए वो स्थूल है, और जो क्रियाओं में नहीं उतरे और अंतरंग में ही बैठा रहे परिणामों में और अभिप्राय में मास्टर बैठा रहे तो वो सूक्ष्म है। अग्रहित मिथ्यात में दोनों निर्मित होते हैं, वैसे अग्रहित की अपेक्षा देखा जाए तो ग्रहित मिथ्यात में स्थूल है, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात बाद में होता है और पहले जाता है, जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो आंख कान नाक विद्या इत्यादि तो जन्म से ही होते हैं, दांत बाद में आते हैं और पहले जाते हैं, ऐसे ग्रहित मिथ्यात जो है वो बाद में आता है, संगी मच्छर भी कोई ग्रहित मिथ्यात हो सकता है, असंगी की मक्खी मच्छर को ग्रहित मिथ्यात नहीं होता, और कोई भी संकेत का प्रयत्न करेगा तो सबसे पहले समझ लीजिए सम्यक से सन्मुखता जिसको अपन कहते हैं वो गरीब मिथ्यास का अभाव होगा तो ही सम्यक से सन्मुख कहलाए। गरीब मिथ्यास की मिथ्यास को शोषण की भूमिका में है, मिथ्यास शोषण की भूमिका में नहीं, वो सम्यक से सन्मुख नहीं। तो गरीब की अपेक्षा देखा जाए तो गरीब मिथ्यास पर स्थूल मिथ्यास है, उसमें भी दो लेवल अपन सोच सकते हैं। एक तो जो माथे करके बोलता है घर में है क्रियाओं में व्यक्त होता है, जैसे गुरु कुलदेव का सेवन कर रहे हैं, कुतत्व का सेवन कर रहे हैं, कुतब का सेवन कर रहे हैं, तो जैन मार्ग से विपरीत मार्ग की चर्चा है, तो उसकी भक्ति है, तो उधर दान लगा है, तो उनका मंदिर बना रहे इस टाइप का। तो ये तो लाइफ में प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो ये तो महान स्थूल है जो पंडित जी ने छठवे अधिकार में जिसका वर्णन किया, लेकिन पांचवें और सातवें अधिकार में तो गरीब विद्या के पांच भेद है, विपरीत एकांत विनय संचय और अज्ञान। तो मान लीजिए जैसे समय साल में सांख्य मताने आई शिष्य को समझाते हैं, अब वो शिष्य बन के तो बैठा है दिगंबर मुनि और अभिप्राय में सांख्य मत की भांति आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है या बौद्ध मत की भांति आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानता है, अभिप्राय में। तो ये सूक्ष्म गरीब विद्या है, ऊपर से देखो तो दिगंबर मुनि है और अभिप्राय में देखो तो गरीब विद्या है। इसी तरह से ये निश्चयाभास व्यवहाराभास और उभयाभास, आपको आश्चर्य होगा डॉक्टर साहब ने थीसिस में जब इन्हें गरीब मिथ्यास में लिया और फतेहपुर के पंच कल्याण में 1971 की बात है, गुरुदेव को पूरी थीसिस सुनाई थी यूनिवर्सिटी में सबमिट करने के पहले, पूरा जो शोध प्रबंध है वो उन्होंने गुरुदेव को पढ़ के सुनाया था। तो गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए थे इस लॉजिक से, बोले ये तो गजब की बात है, ये निश्चयाभास व्यवहाराभास ये गरीब मिथ्यास अनादि काल से होता है, ये कोई जीव अनादि से निश्चयाभास ही होता है, ध्यान में है। तो ये तो जो जीव जैन है जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं जिन आज्ञा मानते हैं उन्हें भी नए संबंधी जो विपरीत का है उसके कारण ये निश्चयाभास व्यवहाराभास खड़े होते हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें निमित्त तो बनते हैं जैन शास्त्र, लेकिन अभिप्राय की विपरीतता होने के कारण वो सच्चे निमित्तों को ही मिथ्यास में निमित्त बना लेता है, उनको के निमित्त मिथ्यास कर समय साल पर सत्संगी हो गया, समझ में आया ना, तो वो सत्संगी उसका गरीब मिथ्यास। तो इस तरह ये निश्चयाभास व्यवहारवाद अभिप्राय के दोष है और अभिप्राय के दोष सूक्ष्म मिथ्यास होते हैं। एक प्रश्न और चलता है कि ये गरीब मिथ्यास किस गुण की पर्याय, ये बहुत चलता था। अभी जो हमारे मित्र यहाँ आते नहीं है, स्वास्थ्य से काफी धीरे हैं, इसलिए यहाँ देवदारी आते नहीं, प्राय आते रहते थे, तो हमेशा ये पूछते थे गरीब मिथ्यास किस गुण की पर्याय। उनका कहना था चार गुण की पर्याय है, मैं कहता दर्शन मोहनी के तीव्र हृदय में गरीब मिथ्यास होता है और जब दर्शन मोहनी का अति मंद उदय हो गए तो गरीब मिथ्यास टूटता है और मात्र अगरीब मिथ्यास शेष रहता है। ये टॉपिक अलग है लेकिन ये विषय समझने लायक है। हाँ जी देवेंद्र जी, कृष्ण अर्जुन के बारे में प्रश्न है, कृष्ण जी को नरक का वध चित्त से हुआ, क्या अर्जुन को मारने की प्रेरणा देने से कि तू तो युद्ध कर, ये सब कोई रिश्तेदार सब झूठे हैं, तू तो मार, तो इसलिए नरक गए।
इसमें क्या होता है, जो नारायण होते हैं नारायण का एक स्वरूप होता है कि नारायण मटकर के नियम से नरक में जाते हैं, उसमें मारने से होता है। तो फिर पांडव कौरवों ने तो 18 दिन तक इतनी युद्ध किया था तो सारे कृष्ण जी ने तो प्रेरणा की, प्रेरणा करने से वो तो नरक चले गए और जिन्होंने मारा मोक्ष में चले गए, ये काम नहीं था। इसलिए वास्तव में जो नारायण का जो स्वरूप है ये सारे नारायणों का है, तो सारे नारायण ऐसे ही नरक में जाते हैं।
लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि नारायण को बलभद्र के प्रति अति तीव्र
बराबर
और इसकी हरिमंद पुराण में एक बहुत रोमांचक और प्रेरणा लेने लायक घटना आती है कि जब नैमिनाथ भगवान के समूह शरण में ये डिक्लेयर हो गया कि द्वारका जलेगी और ये सब होगा तो कृष्ण ने आगे सभा में कहा कि आज भगवान ने समूह शरण में ये बात कही है तो जिसको आत्महित करना हो वो करे, यानी मुनि होना हो व्रति होना हो जो मेरी तरफ से उसको प्रेरणा है समान लोग छूट है मुझसे आज्ञा वाज्ञा देने की जरूरत नहीं। लेकिन एक कमेंट साथ में होती है कि आप मुझे इस मामले में आदर्श मत बनाना, ऐसा लिखा हरिवंश पुराण कि मुझे इस मामले में आदर्श मत बनाना कि ये खुद तो होते नहीं मुनि और हम से कह रहे हैं मुनि होने की, क्योंकि भाई के प्रति तीव्र मोह होने के कारण मैं दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। तो नियम से जाते हैं तो ये तो एक फैक्ट है और जो जैसे परिणाम भी नियम से होते हैं ना, जो कौन से परिणाम है जो नियम से होते हैं, तो भाई के प्रति तीव्र मोह ही है सब। लक्ष्मण का भी ऐसे ही हुआ, उनको तो देवों ने आगे बता दिया कि राम से जी तो चले गए, हार राम से ही रहिए लक्ष्मण के साथ, सुन नहीं सके इस बात राम के वियोग की बात सुन नहीं सके उत्तराण निकल गए कि कितना तीव्र मोह होगा। और ये भी विचित्र नियम है कि फिर नारायण की देह को 6 महीने तक वो बलभद्र जो है वो कंधों के लिए हुए घूमते, मतलब साथ में लेके घूमते, दार संस्कार नहीं करते। और आश्चर्य की बात है कि पांचों भरत पांचों ऐरावत पांचों विदेश 15 कर्म भूमि जहाँ जहाँ ये होते हैं सब पर कंधों का ये हाल होता है। और 6 महीने बाद फिर वो थोड़ा वो मोह डाउन हो जाता है तो फिर
ये प्रकरण अपने इसमें जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ना वर्तमान युग के प्रकरण में इसमें ये सारे बिंदुओं की बोल
दिया। हाँ प्रश्न है, सत्ता में हो हूँ अने शक्ति में हो हूँ तेमा सो फरक, ये प्रश्न है सत्ता में हो हूँ कुछ सना में लिखा सत्ता में, अब इसमें सत्ता में होने का और शक्ति में होने का क्या फर्क है, किस चीज का, दो पॉइंट बनते अभिकारी और विकारी, रागादि का सत्ता में होना पना नहीं है, शक्ति में भी नहीं है अगर देखा जाए आत्मा पर्याय में है तो पर्याय में उसका अस्तित्व है तो पर्याय का उसका स्वरूप है वो निकल जाता है। और जहां तक उसकी शक्ति सामर्थ्य की बात है जैसे 47 शक्तियां भी बताई, ज्ञान दर्शन चरित्र आदि गुण धनुष बताए, धर्म युगल आदि बताए, ये त्रिकाल सत्ता में है उसके पदार्थ के द्रव के और उसके जो विशेष गुण आदि है वे सब उसके शक्ति रूप विद्यमान है, जिसको अपन कारण द्रव को कारण शुद्ध पर्याय जिस शब्द निकला ना तो कारण शुद्ध ज्ञान ऐसा सब खुलासा किया तेरे ने कार्य शुद्ध ज्ञान, तो एक एक गुण में भी वो कारण पना चलता है उसका अपना अपना कार्य होता है। तो शक्ति में है और वो उसकी अभिव्यक्ति होती है, सब आत्माओं में मोक्ष रूप शक्ति रूप मोक्ष विद्यमान है, शक्ति रूप मोक्ष विद्यमान है, जिनका प्रगटपना हो जाएगा तो व्यक्ति रूप मोक्ष हो जाएगा, भव्य का भव्यत्व का प्रगटपना। अब जैसे ऐसे भी भव्य जीव हैं जिनका लक्षण अपन बनाते ना कि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अनंत अनंत जीव राशि ऐसी है जिन्हें दूरान दूरी भव्य कहते हैं, नित्य निगोद से कभी निकलेंगे नहीं तथापि भव्य। मान लीजिए सुमेरु पर्वत के नीचे सोने की खदान है, बिल्कुल सेंटर में वहां का सोना निकल के आपका आभूषण कब बनेगा, तो उसमें योग्यता नहीं है क्या, नहीं प्रणव तो व्यक्तता नहीं होगी। तो शक्ति में होना सत्ता में होना एक अर्थवाची भी है, और अगर विकार की ओर से लिया जाए तो कोई भी द्रव्य की सत्ता में विकारोत्पादकता नाम का गुण धर्म सत्ता में नहीं कि विकार को पैदा कराए, लेकिन 6 द्रव्यों में जीव उद्गल में उनकी वर्तमान अवस्था में विकारू परिणाम की योग्यता पाई जाती, ये पर्याय की योग्यता है। इसलिए चौद्र में भावती शक्ति तो कहीं, क्रियावती शक्ति इन दो में कहीं, जीव पुद्गल शेष प्रांत होते हैं। ऐसी भाव शक्ति में देखे तो विकार रूप परिणमने की योग्यता जीव पुद्गल में कहा ना। तो इस प्रकार का आपका अगर ये प्रश्न है, तो सत्ता में अभी जैसे मैंने सर्वज्ञ की बात की थी कि सर्वज्ञ स्वभाव सब आत्माएं हैं, अभव्य में भी सर्वज्ञ स्वभाव है, अभव्य में भी अनंत गुण धर्म है बिल्कुल भव्य की तरह, लेकिन उनका कभी भी क्या नहीं होगा, व्यक्त रूप प्रणमन नहीं होगा। अब आप जैसे कल अभय जी ने बताया था नहीं कि जैसा मैं कहती हूँ कि टीका में आया क्या द्रवलिंग का क्या वो
सुर्ष केवली कल्प
कहा कि इतना बिल्कुल 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और ऐसी शुक्ल निष्ठा उसके बिना 9 में क्रिवेक नहीं जाता, तथापि मिथ्या का बुखार बिल्कुल भी उतरा नहीं। अब कहने को डिग्रियां भले तुम बनाओ कैसा उसको ग्रीस मिथ्या नहीं बिल्कुल बीतरा देश बिल्कुल जैसा आगमन कुल जो बोलता बिल्कुल वैसे ही बोलता है, कोई मायाचारी कोई मान नहीं उसके, तब जाता है ग्रंथ। तथापि अब आप कहेंगे पर्यंजक्त क्यों नहीं, तो उसकी वो योग्यता वाली बात आती है कि उसका जाने का काल केवल ज्ञान की नोंद में है कि मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर होकर मोक्ष जाएगा, कौन जीव कब जाएगा। इससे कुछ लोगों को ये बनता है कि साहब जैसे मैं बोल रहा था ना कि ट्रेन पकड़ना तो फटाफट किसाब क्रम में होना होगा, तो आचार्यों से ये पूछा गया एक जगह धबला में है कि आखिर हमें नहीं पता नहीं क्षण पर्याय में क्या होना, तो कहते विवेक से उठो बैठो, विवेक से बस ज्ञान से, बाकी अंदर में श्रद्धा ये होना चाहिए जो होना है वो निश्चित है, इसलिए तुम्हें कोई उतावली को हताश निराश होने की जरूरत नहीं। भाई डायरेक्शन राइट होना चाहिए, तुम गलत डायरेक्शन में दौड़ो प्रयत्न करो तो वो सब तुम्हारे लिए फलदायी नहीं होगा, ऐसा समझना। अभी हो गया इसमें और किसी कोई क्या प्रश्न है इसमें बोलो। सत्ता में हो अने शक्ति में हो तेमा सो फर्क है मेरे हिसाब से तो मैंने बोला। तो हम जीवन जैसे राजद्वेष है पर्याय में स्वीकार है, मैंने विकृति की स्वीकृति समय ज्ञानी को होती कि गुणस्थान का भी पता उसको होता है, किंतु गुणस्थान अतीत आत्मा का श्रद्धा नहीं होता, गुणस्थान नहीं मार्ग स्थान ये सब पर्यावरण सब करने चाहिए कर्मोदय जन अवस्थाएं, लेकिन उसको अपनी स्थिति का भी पता रहता ना पर ऐसा समझ लो। हो गया आपको और प्रश्न।
एक पर्ची में प्रश्न लिखा है पूर्णता का लक्ष्य माने क्या, पूर्ण पर्याय या परिपूर्ण धर्म, इसे स्पष्ट करें। ये बात कहाँ यहाँ लिखी हुई है, गुरुदेव जी का प्रसिद्ध ये स्लोगन है और आज हेमंत भाई ने अपने स्वाध्याय में इसकी चर्चा की थी और उन्होंने तो संदर्भ भी बताया था कि दीक्षा लेने के पहले राजकोट में उन्होंने 1 से लेकर 99 गाथा तक प्रवचन किए थे, 4 महीने रहे थे, तब उन्होंने ये बात वहाँ कही थी। देखिए पूर्णता द्रव्य स्वभाव में तो है ही, और अगर ये पूर्णता का लक्ष्य द्रव्य स्वभाव लिया जाए तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वभाव का लक्ष्य होता अनुभव लक्ष्य प्रति उसकी प्रतीति भी होती है, उपयोग उसके सन्मुख भी होता है, उपयोग उसमें एकाग्र भी होता है, लेकिन जिस प्रसंग में ये बात आती है वहाँ पूर्णता का अर्थ द्रव्य स्वभाव की पूर्णता नहीं है, पर हमारा जो टारगेट है हमारा जो प्राप्त करने का लक्ष्य साध्य है उसकी पूर्णता की बात, मतलब कि कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठता है तो होशियार विद्यार्थी तो यही कामना करता है कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगा, इसी मतलब पूरे नंबर मुझे मिलना चाहिए, इसी लक्ष्य से उसकी पढ़ाई चलती है और उसका प्रयत्न चलता है। तो अगर हमें सिद्धत्व का लक्ष्य नहीं है, मुक्ति का लक्ष्य नहीं, तो समय दर्शन की क्या जरूरत है। यानी लोक में भी हम पहला कदम भी कहीं जाने के लिए रखते हैं तो मंजिल तो पहले तय करते ही है ना। आप व्यक्ति में बैठो रिश्ते में बैठो तो रिश्ता रोक लिया बैठ गए तुरंत दूसरे का साथ कहाँ चलना है घर में आया फिर अभी कुछ चल जाए फिर देखेंगे कि होगा तो हो जाए। मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप ट्रेन की टिकट भी खरीदो फ्लाइट की टिकट भी खरीदो तो आपको पहले डेस्टिनेशन तो मिट्टी करना पड़ेगा ना कि हमें कहाँ जाना है। तो हमारी जो ऑफिस जो अवस्था है मुक्त अवस्था वो उसकी श्रद्धान और प्रती होती है तो ही समय दर्शन होता है। यानी अगर हमें अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो समय दर्शन की बात भी बहुत दूर है, हम उसका मतलब ही नहीं समझते। तो ये पर्याय वाली पूर्णता की तरफ बात। और देखिए आप समय साल में कल तीसरे में आचार्य देव ने भावना की है कि अभी मोह की वजह से मेरी प्रगति में थोड़ी मलिनता है और मैं चाहता हूँ आत्म जाति की टीका के प्रसाद से ये भी नष्ट हो जाए। यानी पूर्ण शुद्धता मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए। फिर सर इसका तो ये तो है हेमंत भाई के हैं के प्रश्न साध्य और ध्येय में क्या अंतर है। बहुत क्लियर है सरकारी जो भगवान आत्मा परम परिणामी भाव जो है वो ध्येय है ध्यान का विषय है श्रद्धा का सर ध्येय है और अनुभूति के काल में ज्ञान का स्वेय है श्रद्धे ये तीनों ध्रुव परम परिणामी भाव की बात है। साध्य हमें साधना के फल को साध्य कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं साधना के फल जिसके लिए साधना की जाती जिस प्रयोजन से साधना की जाती जिसे हम प्राप्त करना चाहते वो साध्य है। तो सिद्धांतों पर साध्य है और सरकारी गुरु भगवान आत्मा वो थे। अभी मैं इनका प्रश्न पढ़ता हूँ। ये पर्याय की स्वतंत्रता की बात आवी ज्यारे पण आ बात आवे त्यारे आनो समन्वय पुरुषार्थ साथे कई रीते थाय ते प्रश्न उठे जिसे तो तेनु समाधान कर दो। पर्याय तो स्वतंत्र है ही अपने समय में होगी तो अब हम पुरुषार्थ क्या करें। अगर हम पुरुषार्थ करने की सोचते हैं तो ऐसा लगता है वो पर्याय की स्वतंत्रता के विरुद्ध वो बात जा रही और अगर हम पर्याय को स्वतंत्र मानते हैं तो वो पुरुषार्थ के विरुद्ध जा रही है। ये खुलासा मैंने प्रश्नकाल की तरफ से किया है उत्तर तो आपको देना
लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषार्थ पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय इसी का नाम वास्तव में पुरुषार्थ है। हमको जो लगता है कि पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय मैंने हम पर्याय को परतंत्र माने और पुरुषार्थ करके उस पर्याय को करना चाहते हैं ये उस पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। सच्चाई यह है पर्याय की जो व्यवस्था है वस्तु सवाल की जो व्यवस्था है उस वस्तु सवाल की व्यवस्था का सही स्वीकार करना सही स्वीकार ज्ञान में आना इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि इस निर्णय के बल पर हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रयोजन पुरुषार्थ की पुरुषार्थ का मतलब क्या है जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। पुरुष प्लस अर्थ अर्थ माने प्रयोजन और पुरुष माने आत्मा तो आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो उसका नाम पुरुषार्थ है। तो पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय आज तक हमने क्या नहीं हुआ आज तक हमने पुरुषार्थ के नाम पर कर्ता बुद्धि का सेवन किया है और पर्याय की क्रमबद्धता के नाम पर स्वच्छंदता का सेवन किया है। ना तो पर्याय की क्रमबद्धता स्वच्छंदता को बताती है और ना पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ के नाम पर जब कर्तावाद का कर्तावाद की बात करते हैं तो वो भी नहीं है मतलब कर्तावाद भी बिल्कुल नहीं है। पर्याय अपने स्वकाल में ही परिणित होगी और स्वकाल में परिणित होने पर भी बिना पुरुषार्थ के एक भी पर्याय प्रकट नहीं होगी ये उसकी व्यवस्था है। मतलब क्योंकि कोई भी कार्य होता है ना तो वो कार्य जैसे काल लगती उस कार्य का एक फैक्ट है समवाय है इसी तरह पुरुषार्थ भी उस कार्य का एक समवाय है और पांचों की समग्रता में कोई भी कार्य होता है। तो पर्याय की स्वतंत्रता में पुरुषार्थ का विरोध नहीं है और पुरुषार्थ के होने में पर्याय की स्वतंत्रता का विरोध नहीं है। यानी यूं कह सकते हैं कि पर्याय की स्वतंत्र पर्याय स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ पूर्वक होती है और पुरुषार्थ पूर्वक स्वतंत्र रूप से पर्याय होती है। ऐसा नहीं
इसमें थोड़ा सा मैं भी दो शब्द कहता हूँ। अपन ऐसा सोचो सिद्ध भगवान है तो उनको पुरुषार्थ क्या है, कुछ नहीं कर रहे। सिद्ध भगवान क्या कर रहे, धर्म कर रहे कि कर्म कर रहे? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं बोलो तो मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं बताओ? मेंटेन कर रहे हैं। मैं एक्चुअली ये बात इसलिए खुलासा कर रहा हूँ, सुनिए। सिद्ध भगवान जो नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, ये मिथ्या मान्यता मत धारण किया। जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वह तुम करके बताओ, वही पुरुषार्थ। एक चीज वो ज्ञान अनुष्ठान है, तीन काल तीन लोग को जान रहे। केवल ज्ञान के बारे में बात कही गई, केवल ज्ञानी जानने जाते नहीं, अनजाना कुछ रहता नहीं। किसी को लक्ष्य पूर्वक जानते नहीं, ख्याल में है ना? ये लक्ष्य पूर्वक जानने का काम सदमस्त के होता है। दो बिंदु। तीसरा, जो भी केवल के ज्ञान में जानने में आ रहा है, नरक निबोध चार गति के दुखादी, लेकिन वो ज्ञान कभी उनसे तन्मय तद्रूप नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। और जानना पूरा होता है, कितने जीव दुखी हैं क्या है, लेकिन वेदन होता है क्या उनको? नहीं। जानते यथार्थ हैं और वेदन उनके पर के दुख सुख का नहीं होता। इसका तात्पर्य हुआ जो हम पढ़ते हैं ना, सकल ही ज्ञाय तदपि निजानंद रस नहीं। एक यही की घटना है देवन जी, कोई 5-6 साल पहले मैंने यहाँ पर एक बात कही थी, शायद ये कोई गाथा चल रही थी कि हमारे भगवान देखो इस स्वभाव की ओर से छायक नौलब्धि वाले हैं, अनंत दान लाभ भोग भोग और वीर। तो भोग भोग अनंत किनके हैं? अरण शुद्ध के दिलीप भाई। तो हमारे भगवान अनंत भोगी और अनंत भोगी है और सब संसारी त्यागी है। एक्चुअली कहा था तो एक सज्जन आए, क्या पंडित जी क्या बोल रहे थे आप, भगवान भोगी है? अरे अनंत, मैंने कहा, और संसारी त्यागी है। ये कह रहा मुझे त्यागी बनना। तो उन्हें स्वभाव को छोड़ रखा, उनने स्वभाव को ग्रहण किया, आनंद सुख का भोग बटा कर रहे हैं, भोग रहे कि नहीं भोग रहे? तो तुमने अशरीरी ज्ञान शरीर अनंत सुख के भोगी अनंत सिद्ध को तुमने जाना नहीं। जब ये बात स्वभाव से उठेगी तो ये करने धरने के सारा जो भरा है ना अंदर में वो सब समाप्त हो जाए। वो तो भूमिका अनुसार विकल्प भी आएंगे, सब होगा, लेकिन अंदर में ये बात अच्छी तरह बैठ जाएगी। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। और एक और बात है, तीन बिंदु आते हैं। एक कर्ता कर्माधिकार में 103 गाथा में। अब तो और कोई प्रश्न नहीं ले रहे है? अच्छा, तो मैं इसलिए मैंने कहा ले नहीं कहा कि 103 गाथा में आता है कि द्रव से द्रव्यांतर नहीं होता और गुण से गुणांतर नहीं होता। चेतन अचेतन बन जाए या चेतन का गुण अचेतन हो जाए या अचेतन चेतन बन जाए या अचेतन का चेतन गुण हो जाए, ये कभी होता नहीं। और प्रथम सार 98 गाथा में आता है कि पदार्थ स्वभाव से सिद्ध हैं, सर्वज्ञ ने कहा है, और वो अनादि से स्वभाव सिद्ध हैं और उनको अपने कार्य के लिए साधनांतर की जरूरत नहीं है। ये शब्द डाला है साधनांतर, कि मेरी पर्याय कोई दूसरा पैदा कराए, हस्तक्षेप करे तो वो द्रव पंगु हो गया, मैंने उसको अपने कार्य के लिए ऊपर की सहायता की जरूरत पड़े। जब स्वभाव ही उत्पाद में दुर्गम सत है, एक एक समय पर्याय उत्पन्न, तुम कौन सी पर्याय बदलोगे अपनी पर्याय? अरे मुझे क्रोध नहीं करना था, ये तुम असंख्या समय बाद तो पकड़ पाए इसको, इसमें तो चलेगी वो पर्याय नहीं करना था। जो भी परिणाम आता है इसका कोई स्वच्छता का पोषण के लिए जो कहा कि उस पर ये जीव को ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध के नाम पे यदि कोई स्वच्छता पोषता है तो उसने क्रमबद्ध को समझाइए।
और उसमें क्या है, स्वर्ग काल में जो पर्याय प्रकट हुई तो उस पर्याय के प्रकट होने का जो अपना बल है, वास्तव में पुरुषार्थ किस चीज का नाम?
उसका ही नाम,
बल का नाम पुरुषार्थ है ना। आप अर्यंत की परिभाषा पढ़िए, ऐसे बल को धारण करते हैं। तो पर्याय की स्वकाल, स्वकाल से पहले उस पर्याय के प्रकट हो जाने का नाम पुरुषार्थ है। ऐसा तो पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। जैसा आज दोपहर में भी अपनी थोड़ी चर्चा की थी, अभी सिमंदर भगवान है, चलो अभी अपन और दो मिनट में चर्चा कर लेते हैं। सिमंदर भगवान है, अभी केवल ज्ञान से विराज रहे, ठीक है। अभी उनको अपनी सिद्ध पर्याय कब प्रकट होने वाली ये ख्याल में है, नहीं ज्ञान में आ रही? यहाँ कौन से तीर्थंकर थे तब सिमंदर भगवान वहां हुए? यहाँ 20वें 20वें, और आगामी 24 के अपने 13वें तीर्थंकर होंगे तब उनको मोक्ष होगा। तो उनको अपने अनंत ज्ञान में अपनी सिद्ध पर्याय ज्ञात हो रही है कि नहीं हो रही है, और उनके पास अनंत बल यानी अनंत पुरुषार्थ है कि नहीं है। अगर समय से पहले पर्याय को प्रकट करने का नाम पुरुषार्थ हो तो सिमंदर भगवान को पुरुषार्थहीन मानना पड़ेगा। स्वकाल में अपने बल से पर्याय का प्रकट होना, उसी का नाम वास्तव में पुरुषार्थ है। आगे पीछे करने की जो हेरा फेरी करने की जो अपन लोगों ने पुरुषार्थ मान रखा है, वो पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं है।
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, महाप्रबल पुरुषार्थ ने घाती कर्म का नाश कर दिया, अब बड़ी सीनरी और अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध क्यों नहीं हो रहे?
देखो तो जरा विचार, बहुत गजब का स्वरूप है।
ये विषय बहुत आनंददायक है, जितना अपन गहराई से सोचे
हाँ
उतना ही इसमें असरता स्वभाव का भय प्रकट होता है। बहुत से पॉइंट है, अभी तो ये 5 दिन अपने यहाँ 5 दिन की 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक क्रमबद्ध पर्याय की स्पेशल क्लास चली, एक दिन अर्चन का भी, एक दिन
बहुत बढ़िया।
अंतिम प्रश्न है शायद सेशन का, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते मुनि के पांव के नीचे कीड़ा मर जाए और उन्हें पता चल जाए तो उनका भाव कैसा होता है या होना चाहिए? जैसे 6वें 7वें गुण स्थान वाले के होते वैसे होना चाहिए। उनको गुण स्थान का स्वरूप मालूम है ना, सबको आपने गुण स्थान की भाषा में प्रश्न देखा है। वास्तव में चीत कषाय का अभाव रहता है और सज्जन कषाय के तीव्र उदय में उस लेवल का जिससे उनकी मुनि की भूमिका खंडित ना हो उसको उसका खेल हो जाता है, ध्यान में आ जाए ना। तो अरे अरे यार मैं तो मुनि हूँ, मेरे को थोड़ी हिंसा होगी, वो तो शास्त्र में लिखा ही है चलते हुए कीड़ा मर जाए तो हिंसा नहीं होती है, मेरे को चंद्र माता नहीं होता है कौन विचार आता है तो एक खेल ही होता है और प्रायश्चित भी अगर उस लायक होगा तो प्रायश्चित भी
प्रवचन सार में है उसका।
और दूसरे वाले का यही अभिप्राय था जिस हिसाब से मैंने बात की,
प्रवचन सार में ऐसा आता है वचनात्मक आलोचना से उनका वो दोष,
वचनात्मक
आलोचना से उनका वो दोष दूर हो गया।
हम कहते हैं कि उनकी सारी क्रियाओं से निद्रा होती है तो भोजन करते समय यदि शुद्ध युग में न हो तो किस प्रकार के परिणाम हो, जब निद्रा कैसे होती है? क्रियाओं से निद्रा होती नहीं, निद्रा तो अभी भाई साहब ने बता ही दिया कि जो शुद्ध परिणति है कषाय का अभाव होने पर जो विकराल परिणति का लेवल प्रकट हुआ है उससे ही निद्रा होती है। और जिसको जितने ऊंचे लेवल की विकरालता है उसको ज्यादा होती है। एस्ट्रोलॉजी साहब अगर मुझे आज भोजन करते हो चौथे गुण स्थान वाला ध्यान करता तो भी चौथे गुण स्थान वाले की कम निद्रा है, अंतिम अंत है प्रश्न का, लोग चतुर है ना, एक प्रश्न थ्री मन की कर लेते हैं। हम सम्यक सन्मुख या चौथे पांचवें मनस्थान वालों के भाव क्रियाओं के समय कैसे हो? गुणस्थान का मतलब ही ये दो कषाय का अभाव, एक कषाय का अभाव, तो वो तो भाव रहते ही है और क्रिया काम करके नहीं होती, सहज होती है। समय से सन्मुख की भी क्रिया सहज होती है, मतलब जिस जाति का राग है उस जाति की क्रिया है, उसमें जबरदस्ती करना कि दूसरों को दिखाने के लिए करना कि अंदर में भाव नहीं है तो भी धोना उसको, ऐसा नहीं होता। ये इस तरह से ये आज का सेशन पूरा होता है। बोलो
बताया था, ये दे दो माइक,
नहीं
नहीं
माइक ले,
माइक ले,
माइक से बोल।
आप आपने सुबह में बताया था कि क्षमा यानी अपराधों को कितनी माफी देनी है,
मुझे थोड़ी बताया
यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कमाल लेना, मैं सोचता हूँ
ऐसा
है कि एक से सौ माफ कर दिया लेकिन बाद में सौ के बाद में कुछ है तो मैं मेरा सुदर्शन लगा होगा, तो ऐसा मेरे जीवन में ऐसे एक पार्टी से मेरी काम जिससे मैं करता हूँ तो उसने मेरे साथ चार बार ऐसा किया, पांच बार ऐसा किया, पांचवे बार के बाद मैंने उसको बोल दिया कि भाई देखो अभी तेरे को मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं न्यूज पेपर में तेरा नाम दे दूंगा, दूसरे दिन उसका पैसा मेरे बैंक खाते में जमा हो गया। ये बात इधर पूरी होगी बराबर, लेकिन अभी हमें क्षमा के लेवल पे ऊपर जाना है। अभी मुझे उस व्यक्ति के साथ वो चार बार मेरे से चीटिंग कर चुका है, उसके साथ व्यवहार करना नहीं करना कैसे करना, और उसके साथ अगर मैं दूसरे के पास जाता हूँ उसको छोड़ देता हूँ तो मेरे पुण्य के अंतराय आते हैं, तभी ये वो निमित्त बना और मुझे ये भुगतना पड़ा, तो क्या दूसरे के पास भी मैं जाऊँगा तो ऐसा होना संभव है ना, अगर है तो मुझे इसे कंटिन्यू मेरे दिल में उसके प्रति कौन से भाव रखे करना चाहिए।
वास्तव में क्षमा से प्रश्न उठाया गया है और लौकिक व्यवहार के संदर्भ में क्षमा की बात आई है। देखिए वास्तव में क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, ये तो बहुत स्कूल वाले मैं भी सुन रहा था कि अगर आपने सौ अपराध माफ कर दिए तो जो एक तो एक माँ है वो तो पहले ही हुआ ना, सौ की तो फाइल डिलीट हो गई, वो तो खत्म हो गई। तो वास्तव में जिस समय क्रोध हुआ उसी समय क्षमा का अभाव है, और जितने अंतों में कसाय का अभाव है क्रोध का अभाव है उतने अंतों में क्षमा है। जहाँ तक लौकिक व्यवहार की बात है तो सब सबकी है, अंतराय का उदय आएगा तो उसमें नो कर्म कौन बनेगा वो सबकी है। यदि आपके भावों में क्षमा की तो बात बहुत हाई लेवल की है वो तो विचारता की है, लेकिन लौकिक शक्ति से भी यदि आपको साम भाव बरतता है तो जितना हो सके उतना आप कषायों से बचें और जो लीगल जो जीव है उसका यूज करते हुए उसको डील करें। मेरे ख्याल से बाकी आप पैसे दे रहे हैं अभी आप लिख के देना।